ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम सातवां स्कंद पंद्रहवां अध्याय श्लोक संख्या 77। नायस्य साक्षात् भव पद्मजादिभिः रूपं धियावस्तुतयो उपवर्णितम् मौनेन भक्त्योपशमेन पूजिता प्रसीदता मेष सा सात्वतां पति। धन्यवाद। अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की नाम नहीं यस्य जिसका श्री कृष्ण का साक्षात प्रत्यक्ष भव शिवजी पद्मजादि भी ब्रह्मा इत्यादि के द्वारा रूपम रूप को धिया ध्यान से वस्तुतया वस्तुतः उपवर्णितम बताया जा सकता है। मौनेना मान से भक्त्या भक्ति से उपशमेना सारे भौतिक कार्यकलापों को पूरा करके पूजिता जिनकी इस तरह पूजा की जाती है प्रसीदताम हम पर प्रसन्न हो एषा यह सह वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सात्वताम भक्तों का पति पालक स्वामी तथा मार्गदर्शक। अनुवाद यहां अब वही भगवान उपस्थित है जिनका असली रूप ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों की भी समझ में नहीं आता। उनके भक्त अपने निष्ठापूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा उनका साक्षात्कार करते हैं। ऐसे भगवान जो अपने भक्तों के पालन करता है और जिनकी पूजा मौन भक्ति तथा भौतिक कार्यों के उपशम द्वारा की जाती है हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य जब भगवान कृष्ण शिव तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों को ठीक से समझ में नहीं आते तो सामान्य व्यक्तियों की क्या कहा जाए, लेकिन वे अपने अहैतिक कृपा से अपने भक्तों की भक्ति का वरदान देते हैं जिससे वे कृष्ण को यथारूप में समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावत् चास्मि तत्वता। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं जो कृष्ण को सचमुच जान सके, किंतु यदि कोई भक्ति करता है तो वह उन्हें पूरी तरह समझ सकता है। इसकी पुष्टि भगवान ने भी श्रीमद् भगवद्गीता 7:1 में की है। मया सक्त मनः पार्थ योगम योजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञायसी तत्श्रेणु। हे पिता पुत्र अर्जुन, अब सुनो कि किस तरह मेरी चेतना से परिपूर्ण होकर और अपने मन को मुझ में अनुरक्त करके योगाभ्यास करने से तुम बिना संशय मुझे पूरी तरह समझ सकते हो। भगवान स्वयं शिक्षा दे रहे हैं कि कोई उन्हें पूर्णतया किस तरह जान सकता है। ना केवल पांडव अपितु तो कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण के आदेशों को निष्ठापूर्वक स्वीकार करता है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथारूप में समझ सकता है। युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देने के बाद नारद मुनि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे वे सबों पर प्रसन्न हो और सभी लोग ईश्वर चेतना में पूर्ण बनकर भगवत धाम वापस जा सके। ओम अज्ञानस्थ निरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं सन्देहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साजलेकं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण नलिका श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशिष्ट शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ये 7वें अध्याय का 7वें स्कंध का 15वां अध्याय है, सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश, श्लोक संख्या 70। तो नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे थे कि कैसे सुसंस्कृत मनुष्य बना जा सकता है। इसमें ग्रस्त आश्रम के मुख्य कर्तव्य बताए गए और किस ढंग से नारद मुनि ने कंक्लूड किया कि ग्रस्त आश्रम में रह के सभी वैदिक नियमों का पालन करके, अगर एक ग्रह आश्रम में रहने वाला भक्त सभी वैदिक नियमों का पालन करता है, धर्म का पालन करता है, और प्रभुपाद उसको ट्रांसलेट करते हैं जो कि हरिनाम संकीर्तन में जुड़ता है, ग्रस्त में रहते हुए वो एक सन्यासी के समान है और वो जीवन के अंत में पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, भगवत धाम वापिस जा सकता है। ये पूरा संदेश देने के बाद फिर भी युधिष्ठिर महाराज का उत्साह बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सारा का सारा प्रसंग शुरू हुआ था कि युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे कि मैं तो गृहमेदी हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा। फिर नारद मुनि उनका उत्साह बढ़ाते हैं पिछले श्लोक संख्या 68 से। नारद मुनि बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो कि परम ब्रह्म है, उन्होंने तो हर स्थिति में आपकी रक्षा की है और ऐसे परम ब्रह्म तो आपके घर में आते जाते हैं, आपके साथ रहे हैं। और आज के श्लोक में भी बोल रहे हैं न यस्य साक्षात भव पद्म जात भी। वही भगवान यहां उपस्थित हैं जिनका आश्रय लोग ब्रह्मा और शिवजी जैसे महापुरुषों को भी समझ में नहीं आता। तो इस श्लोक में हम देखते हैं मुख्यतः तीन मुख्य बातें हैं। सबसे पहले नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज का गुणगान कर रहे हैं कि आपके घर में वही साक्षात भगवान है जिनको ब्रह्मा जी और शिवजी तक भी नहीं समझ पाते, वो आपके घर में है। दूसरा, नारद मुनि बता रहे हैं कि किस प्रकार एक आम व्यक्ति भी पांडव जैसा भाग्यशाली बन सकता है, यानी कि भगवान को जान सकता है, भगवान को साक्षात देख सकता है। और तीसरा, नारद मुनि हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं प्रसीदताम ईश्वर सत सात होताम पति, कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब जीवों पर आशीर्वाद दीजिए और सब जीवों को से आप प्रसन्न हो जाइए। तो इसमें मुख्यतः तीन बातें हैं, युधिष्ठिर महाराज का गुणगान और कैसे एक आम जीव भी पांडवों की तरह भाग्यशाली बन सकता है, और तीसरा एक शुद्ध भक्त का आशीर्वाद। तो सबसे पहले नारद मुनि कैसे, युधिष्ठिर नारद मुनि एक वैरागी हैं और युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ आश्रम में है, फिर भी वो उनका गुणगान कर रहे हैं क्योंकि साक्षात भगवान उनके साथ रहते हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके पालक हैं। आज जब हम देखते हैं कि जब किसी भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है तो एक अच्छे भक्त का कर्तव्य रहता है, अच्छा भक्त उस भक्त की प्रशंसा करता है कि वो भगवान की कृपा को प्राप्त कर पा रहा है। जब हम देखते हैं कि एक भक्त भक्ति में उन्नति कर रहा है तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए कि उस भक्त का हम गुणगान करें कि यह भक्त इतना भाग्यशाली है कि इसको भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है, क्योंकि भक्ति पूर्ण रूप से और एकमात्र कृपा पर ही निर्भर है। और अगर कोई भक्ति में आगे अग्रसर हो रहा है तो निश्चित रूप से इसको कृपा प्राप्त हो रही है। और कोई बहुत सुंदर कीर्तन कर रहा है, बहुत सुंदर कथा कर रहा है, बहुत सुंदर भगवान का विग्रह का श्रृंगार कर रहा है, बहुत अच्छे ढंग से प्रशासन का प्रबंधन का कार्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर विशेष कृपा है। और उस कृपा को देखकर भक्त को बहुत प्रसन्न होना चाहिए, वाह इस जीव ने भगवान की कृपा को आकर्षित कर लिया। जितनी मात्रा में हम भक्तों पर हो रही कृपा की प्रशंसा करेंगे उतनी ही मात्रा में हम भगवत कृपा प्राप्त करने के योग्य बनेंगे। और जितनी मात्रा में हम देखेंगे दूसरे को कृपा मिल रही है मुझे क्यों नहीं मिल रही, अरे ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो हम कृपा से वंचित रहेंगे। तो प्रशंसा करनी चाहिए, अरे वाह कितना सौभाग्यशाली जीवन, उसको भगवान की कृपा मिल रही है। जैसे कि अगर हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास जब रूप गोस्वामी मिलने आए जगन्नाथपुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी का इंट्रोडक्शन कराया सभी भक्तों से। हरिदास ठाकुर थे, अद्वैताचार्य थे, श्रीवास ठाकुर थे और चैतन्य महाप्रभु सभी पार्षद, और रूप गोस्वामी से बताया कि ये रूप गोस्वामी है, पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, किस ढंग से सब कुछ छोड़ के आए, और उनका भूरी भूरी गुणगान किए जा रहे हैं। और जब महाप्रभु गुणगान करते थे भक्तों का तो कृष्णदास कविराज जी लिखते थे ऐसा लगता था कि महाप्रभु के एक नहीं पांच पांच मुख है, तो इतना जोर गुणगान। और जब महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं साथ साथ दूसरे भक्तों को भी देख रहे हैं कि इनको कैसा महसूस हो रहा है, इनका चेहरा इनको कैसा लग रहा है कि क्या ये नया नया व्यक्त है ऐसा गुणगान कर रहे हैं महाप्रभु, हमारा तो करते नहीं। वो देख रहे हैं महाप्रभु देख रहे हैं कि अब महाप्रभु रूप गोस्वामी गुणगान कर रहे हैं तो बाकी सब भक्त भी बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत प्रसन्न है, तो उनकी प्रसन्नता को देखकर महाप्रभु उनसे भी बड़े प्रसन्न हो गए। तो इसलिए ये भक्तों का गुणगान करना चाहिए कैसे उनको कृपा प्राप्त हो रही है। हमें भक्तों को देखा कि कृपा प्राप्त हो रही है तो कई बार हम भी उनकी नकल मानना चाहेंगे। जैसे एक बार शीला प्रभुपाद कहीं विदेश में थे तो प्रभुपाद को एक अपार्टमेंट मिला हुआ था, तो प्रभुपाद बाहर बालकनी में आए तो अपार्टमेंट ऐसा था कि साथ में उनके भक्त भी दूसरे लोग रह रहे थे, और साथ वाले अपार्टमेंट में ही रह रही थी यमुना माता जी, तो वो भी बालकनी में आ गई। यमुना माता जी ने प्रभुपाद की बहुत विशेष सेवा की, आप सब जानते हैं जो हम प्रतिदिन गोविंदमादि परिषम गाते हैं ये यमुना माता जी के द्वारा ही गाया हुआ है। जब पहली बार प्रभुपाद ने इसके रिकॉर्ड को सुना था प्रभुपाद भावावेश में आ गए थे, प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए थे। हालांकि यमुना माता जी एक स्त्री है लेकिन एक शुद्ध भक्त, तो यमुना माता जी ने प्रभुपाद को बोला देखा और बड़ी कृतज्ञता से और प्रेम से यमुना माता जी ने कहा आई लव यू प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने भी यमुना माता जी को देखा और बड़े कृतज्ञता से, यमुना माता जी ने बहुत सहायता की प्रभुपाद की प्रारंभिक दिनों में, तो प्रभुपाद ने बड़े प्रेम से कहा आई लव यू टू। अब ये बात पूरे भक्तों में फैल गई और माता जी के समाज में फैल गई कि प्रभुपाद को उन्होंने बोल दिया आई लव यू,
गुरु को बोल दिया आई लव यू और गुरु ने भी बोल दिया आई लव यू, तो कितनी बड़ी बात है। एक और माता जी प्रभुपाद के पास गई, प्रणाम के, बोला आई लव यू प्रभुपाद। प्रभुपाद ऊपर से नीचे लिखा, बोला डोंट बी सेंटिमेंटल, डू समथिंग प्रैक्टिकल। तो अगर वही माता जी ने, अगर यमुना माता जी की प्रशंसा की हुई, वो कितनी सौभाग्यशाली हमको प्रभुपाद की इतनी कृपा मिली, तो एक अलग बात होती। लेकिन नहीं, अगर हमें मिली तो हमें क्यों नहीं। तो इस दिन से इस कृपा की प्रशंसा करने की आवश्यकता है। उनसे कोई हमें, उनसे कोई द्वेष या उससे जलेसी या कंपटीशन की भावना रखेंगे तो हम कृपा से वंचित रहेंगे। दूसरा, हम देखते हैं कि पांडवों पर तो ये कृपा हुई, जिस भक्तों पर कृपा होती है उनका क्या एटीट्यूड होता है। श्री राधा राधिका रमन, श्री कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव सुब्रह्मण्य। अब युधिष्ठिर भगवान, युधिष्ठिर महाराज बहुत डंका नहीं बजा रहे कि देखो जी, हमारे यहां तो पूर्ण पोषक भगवान आते ही रहते हैं, तीन तीन चार चार महीने ही रुकते हैं, यहां हमारे यहां तो अक्सर आते ही रहते हैं, हमने राजस्व यज्ञ कराया था तो शू स्टॉलमेंट की सर्विस थी, जितने ब्राह्मण आते थे उनके पांव धोते थे, उनके जूते रखते थे, शू स्टॉलमेंट थे हमारे, हमारे यहां तो वॉलंटियर थे वो, आते ही रहते हमारे यहां तो। हमें युद्ध हुआ तो अर्जुन के रथ इन्होंने खींचा था, सारे खूनों की मेंटेनेंस वाला यही देखते हमारे यहां पे आते हैं। हम कहेंगे तो हम तो ये बोलेंगे हमारे यहां पे गुरु महाराज आए थे, फोटो भी खींची होती है, साथ में लगाई होती है प्रोमिनेंट प्लेस पे, कहां कहां हमारी जान पहचान है, किन किन बड़े बड़े भक्तों को हम जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज का ये एटीट्यूड नहीं है। युधिष्ठिर महाराज के घर में साक्षात भगवान आते हैं, उनके कजन हैं, उनसे आलिंगन करते हैं, कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के पांव छूते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से बोले मैं ग्रह में यदि हूं मेरा उद्धार कैसे हो। और देखो, और ये कोई झूठी विनम्रता नहीं है, बोले सब पूछते हैं, चलो हम भी पूछते हैं, प्रभु जी मैं तो ग्रह में हूं, बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा। तो युधिष्ठिर महाराज ये महसूस कर रहे हैं कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, नागमी आप इतने सौभाग्यशाली हैं, आप किसी पर कोई बंधन नहीं, आप पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में जुड़े हुए हैं, मेरा कैसे उद्धार होगा। तो ये कृपा, कई बार भक्तों में कृपा होती है तो उस कृपा का भी हमें अहंकार होगा। कल्पना कीजिए, भिखारी को भीख मिली और भिखारी उस भीख मिले तो अहंकारी हो गए, देखो मुझे 10 रुपए का नोट मिला है। तो ये कृपा जिसको मिलेगी वो उस कृपा को बहुत संभाल के रखेगा, वो बहुत सावधान रहेगा, इस कृपा का अहंकार तो नहीं हो रहा मुझे, और कई बार हो भी जाता है ना। भगवान ने अपनी माया का इस ढंग से रचना किया कि कृपा का भी, कृपा मिलने पर भी भक्तों को कृपा का अहंकार हो जाता है। जैसे इन पांडवों का ही था, जब द्रौपदी का हरण किया जयद्रथ ने, तो पांडवों ने द्रौपदी की रक्षा कर ली, जयद्रथ से उसको वापस ले आए। तब मार्कंडे ऋषि ने उनको कथा सुनाई पांडवों को कि इसमें घबराइए मत, भगवान राम के साथ भी ऐसा हुआ था, उनकी भार्या सीताजी का भी अपहरण कर लिया गया था, और फिर भगवान राम ने रामेश्वर पर यह पुल बनाया था बंदरों की सहायता से। तो अर्जुन ने भी कथा सुन रहे थे, तो अर्जुन सोच रहे थे कि भगवान राम का गुणगान मैंने हमेशा सुना है कि वो बहुत बड़े धनुर्धारी थे, अपने एक बाण से उन्होंने रावण का वध कर दिया था, तो इतने बड़े धनुर्धारी थे तो बंदरों से क्यों उनको सहायता देनी पड़ी पुल बनाने के लिए, है ना। भीष्म पितामह भी कहते हैं कि राम बड़े धनुर्धारी थे, कृष्ण भी उनका गुणगान करते रहते हैं, लेकिन पुल तो तीनों से भी बनाया जा सकता है, तो ऐसा वो सोच रहे थे। तो साथ में हनुमान जी खड़े थे, हनुमान जी ने एक छोटे बूढ़े से बानर का रूप लिया, तो अर्जुन के हृदय को समझ गए कि अर्जुन के हृदय में क्या संदेह आ रहा है। तो उन्होंने अर्जुन से कहा, देखिए पूर्व काल में ऐसा होता था कि जो बंदर थे बड़े भारी भरकम होते थे, तो अगर भगवान राम तीरों का पुल बनाते तो वो पुल उनका वजन सहन ना कर पाता, इसलिए टूट जाता, इसलिए बंदरों की सहायता से उन्होंने पुल बनाया। तो अर्जुन ने बोला, ये तो खास बात नहीं है, देखो मैं अभी पुल बना देता हूं, तीरों से बना देता हूं और देखना सारे बंदर इसमें चलेंगे। तो उस बूढ़े बानर ने कहा, ठीक है आप करो सारे, क्या मैं ही चल के देख लूंगा। तो अर्जुन ने बोला, इसमें क्या, वो बोला अगर मैं ऐसा ना हुआ तो क्षत्रिय है अर्जुन, बड़ी गर्मी बोलता है, कोई बात नहीं, अगर मैंने मेरे पुल नहीं आपका वेट सहन कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अर्जुन तो बार बार ऐसे बोल देते थे, ये भी होता अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, ठीक है। तो मंत्र का जप किया, तीर फेंका, खड़खड़ तीरों से सारा पुल बन गया, तो बोला चलो ये वृद्ध वानर चल के दिखाओ। क्या चलने की जरूरत, एक पूंछ रखी बस। पूंछ रखे धर सारा का सारा पुल गिर गया। अर्जुन बड़ा हैरान, अर्जुन के अहंकार को इतनी ठेस पहुंची, पूरा सा वानर चला खाली पूंछ टच किया पूरा पुल खत्म। तो बोले ठीक है अग्नि में प्रवेश करता हूं। अग्नि में प्रवेश करने लगे तभी भगवान ब्राह्मण बन के आ गए। बोले ठहरो ठहरो ठहरो, क्या हो क्या रहा है बताओ तो सही। बोले ऐसे ऐसे बात हुई। बोले इसका साक्षी कौन है, आप दोनों के बीच में बातचीत, इसका साक्षी कौन है? बिना साक्षी के कोई बात होगी नहीं, अब मैं साक्षी हूं, अब दोबारा से करो। चलो अर्जुन ने बोला एक चांस मिल गया दोबारा से। फिर अर्जुन ने ऐसा किया, पुल बनाया तीनों का, पुल गया। बोला चलिए अब वो आए वानर, वो कूदे ऊपर, उन्होंने पुरा लिया और पुल का पुल बना हुआ वैसे का वैसा। और फिर हनुमान जी ने क्या देखा कि उस पुल को वास्तव में तीनों का तो खड़ा है, लेकिन उस ब्राह्मण ने अपने पूरे हाथों से उसको उठाया हुआ है, अपने कंधों पर उठाया हुआ है। और वो ब्राह्मण से हनुमान समझ गए कौन है, उनके इष्ट साक्षात भगवान राम। और अर्जुन भी समझ गए साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और हनुमान जी ने देखा कि भगवान के कंधों पर पूरे घाव आए हुए हैं, क्योंकि यहां तो वो साथ साथ ना ही वो पुल उठा रहे हैं बल्कि उन वानर का भी भेंट उठा रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा ये मैंने क्या किया, अपने भगवान राम से मैंने सेवा ले ली। तो भगवान राम ने इनका आलिंगन किया, बोला तुमने मेरी बहुत सेवा की, अब मैं तुम्हें कुछ सेवा करने का मुझे मौका मिला। तो इस जगह से अर्जुन का अहंकार भी कई बार आ जाता है ना। द्वारका लीला में भी अर्जुन को अहंकार आ गया था जब ब्राह्मण के पुत्र का अपहरण कर रहे थे महाविष्णु। तो बोला कौन सा ऐसा क्षत्रिय है जो ब्राह्मण की भी रक्षा नहीं कर सकता। तो इसलिए कृपा जब भक्तों को मिलती है तो समझना चाहिए कि कृपा है, हमारी कोई भी योग्यता नहीं है। कई बार अपने योग्यता का, अपने स्किल्स का, अपने बुद्धि का हमें अहंकार हो जाता है। भागवतम के दूसरे स्कंध के चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी बिल्कुल सार बता रहे हैं कि भगवान किस प्रकार के नियंता है। यहां पे शब्द आता है सातवताम पति, कि भगवान भक्तों के पालक है, निर्देशक है। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं श्लोक में भगवान कितने प्रकार के पति है, किस किस के पति है ना। भगवान वो कह रहे हैं श्रिया पति यज्ञ पति प्रजापति धियाम पति लोक पति रधार पति पतिर गतम श्वांधक वृष्णि सातवताम प्रसीदता में भगवान सताम पति। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी हैं, यदुवंश के अंधक तथा विष्णु जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, सभी लक्ष्मी देवियों के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतः समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता और पृथ्वी पर परम अवतार सर्वा सर्वे हैं, वे मुझ पर कृपालु हों। तो भगवान सबके पति हैं, धियाम पति भी, बुद्धि के भी पति हैं। कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है तो कौन उसके नियंता है, कृष्ण। और कोई मूर्ख है तो उसको मूर्खता की किसने थी है कि इतनी मिलेगी बुद्धि, किसने, धियाम पति, भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में हमें प्रयास करना चाहिए कि ये ना भूले कि सब कुछ भगवान की कृपा पर आधारित है। और यही कृष्णा कॉन्शियसनेस का मुख्य सिद्धांत है कि भगवान ही सबके स्वामी हैं और हम पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर निर्भर हैं। तो पहला हम देखा कि किस ढंग से एक भक्त को जब दूसरे भक्त को कृपा मिलती है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और जिस भक्त पर कृपा हो रही है उसमें बड़ा सावधान रहना चाहिए कि सब कुछ मेरा कृपा पर निर्भर है, वो अहंकार से दूर रहे। दूसरा भाग में नारद मुनि बता रहे हैं कि जिस प्रकार पांडव इतने भाग्यशाली हैं कि साक्षात वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, जिनका दर्शन जिनको स्वयं शिव जी और ब्रह्मा जी नहीं समझ सकते उनको एक साधारण जीव कैसे जान सकता है। तो कैसे ब्रह्मा जी और शिव जी उनको नहीं जान सकते, ये बात समझ में नहीं आती। हम लोग किस संप्रदाय से हैं, ब्रह्मादम गौड़िया संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय भी है। जब उन संप्रदायों के जो मुख्य आचार्य ही कह रहे हैं कि भगवान को नहीं जान सकते तो हमारी क्या औकात, तो कैसे समझे कि, और बोला भी जाते वैष्णव नाम यथाशंभु, तो फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि जिनको ब्रह्मा जी और शिव जी में नहीं जान सकते। यहां लिखा कोई भी पूर्णतया जान सकते हैं लेकिन ब्रह्मा जी शिव जी नहीं जान सकते, ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं जान सकते ब्रह्मा शिव जी वो लोग। हाँ, ब्रह्मा जी शिव जी अपनी भौतिक योग्यताओं के आधार पर नहीं जान सकते, दोनों ड्यूअल रोल प्ले कर रहे हैं, वो महादेव भी हैं, वो सृष्टि के उन्होंने सृजन किया है, सर्ग विसर्ग ब्रह्मा जी ने किया है, तो अपनी भौतिक योग्यता के आधार पर वो भगवान को नहीं जान सकते। ब्रह्मा जी ये नहीं कह सकते जानते नहीं मेरी उत्पत्ति कैसे हुई है ना, पद्मजा मैं पद्म से उत्पन्न हुआ हूं, पहला व्यक्ति हूं, सबसे वृद्ध हूं, ये कोई योग्यता नहीं है भगवान को जानने की। मैं बहुत सीनियर हूं, मैं तुमसे पहले दीक्षा हुई है इसलिए मैं भगवान को जान जाऊंगा, नहीं ये कोई योग्यता नहीं है, बहुत ही योग्यता नहीं है। मैं पुरुष हूं, मैं सन्यासी हूं इसलिए मैं भगवान को चरण से जानूंगा, नहीं भौतिक योग्यताओं से भगवान को नहीं जान सकते। शिव जी महादेव है ना, ब्रह्मा जी ने सोचा अरे मैंने सारी सृष्टि की रचना की है, ये ग्वाल वाला कौन है, अघासुर का इसने कैसे वध कर दिया, कहते हैं इसने वध किया, देखूं तो सही, टेस्ट करके आता हूं। वहां देखा कि सारे के सारे ग्वाल बाल बैठे हैं और सब बोल रहे हैं शिव कृष्ण को, कह रहे हैं कृष्ण आंखें बंद करो हम तुम्हें कुछ कलेवर खिलाएंगे। कृष्ण आंखें बंद करते हैं तो क्या किया उनके मित्र ने, उनके मुंह में मिठाई डालने की जगह फूल डाल दिया, यानी कि कृष्ण को अप्रैल फूल मनाया और कृष्ण ने फूल खा लिया और सब हंस रहे। तो भगवान ब्रह्मा जी सोच रहे ये इतना मूर्ख बच्चा, इसको बोलने भगवान है ना, इसको कोई बुद्धू बना सकता है, मिठाई की जगह फूल खा लिया, इसने फूल खा लिया, ये कैसे भगवान हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने उनको टेस्ट किया और फिर ब्रह्म विमोहन लीला हुई। इसी ढंग से शिव जी ने सोचा कि आपका मोहिनी रूप, बड़े बड़े देवताओं के सामने आप आए, असुर आकर्षित हो गए, देवता आकर्षित नहीं हुए, देवताओं में इतना संयम था, और मैं तो महादेव हूं, जब देवता आपके मोहिनी रूप को सहन कर लिए तो मैं तो महादेव हूं ही हुई। फिर भी आउट ऑफ इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी, देखो तो सही आप कैसे लगते थे स्त्री के रूप में, दिखाई दे रहा भगवान। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक जोखिम ही भगवान बोला, मैं तो देखूं आपका वो स्त्री रूप जैसे असुर आकर्षित हो गए, देवता ने अपने आपको संभाल लिया, मैं तो महादेव हूं, साक्षात माया देवी मेरे साथ रहती है, वो मुझे भी मोहित नहीं कर पाए, तो ठीक है आप दिखाइए जरा। भगवान ने ठीक है कोई बात नहीं, भक्ति के भाव से नहीं, ब्रह्मा जी ने कोई भक्ति के भाव से भगवान को जानने का प्रयास नहीं किया, टेस्ट करना चाह तो भी भगवान को नहीं जान पाए। हालांकि ये दोनों आचार्य हैं, वैष्णव हैं, लेकिन अपने देवता की कैपेसिटी को जानने का प्रयास करेंगे, भौतिक योग्यता के आधार पर हम भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को जान सकते हैं केवल भक्ति के माध्यम से ना? और भक्ति कैसे, कौन भक्ति प्रदान करेगा, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान अपने अहेतु की कृपा से अपने भक्तों को भक्ति का वरदान देते हैं। भक्ति भी किसी ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाएगी, भौतिक योग्यता से प्राप्त नहीं होगी। भगवान जब भक्ति का वरदान देते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त जब भक्ति का वरदान देते हैं, तभी भक्ति प्राप्त होती है ना? एक सीमित जीव असीमित को कैसे जान सकता है, हम तो सीमित हैं और भगवान असीमित हैं, हम सीमित असीमित को कैसे जान सकते हैं, लिमिटेड अनलिमिटेड को कैसे जान सकता है। लिमिटेड अनलिमिटेड को उसी मात्रा में जानेगा जितनी मात्रा में अनलिमिटेड निर्धारित करेगा, हां इतना मुझे जानना है ना। जो पूर्ण रूप से मूर्ख है, जो पूर्ण रूप से नास्तिक है, उसके लिए भगवान कहते हैं नहा प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूलो यम ना बिजाना थी। जो लोग मूर्ख हैं उनको, उनके लिए मैं अपने आप को योग माया से ढक लेता हूं, लेकिन जो पूर्ण रूप से मुझ में आसक्त है, मैं आसक्त मना पार्थ योगम योजन मदाश्रय असंश्यम समग्र माम यथा गायसी तत्सुनु। लेकिन जिनका मन पूर्ण रूप से मुझ में आसक्त है, असंश्यम समग्र माम, वो बिना संशय रहित होकर मुझे पूर्ण रूप से जान सकते हैं। तो दोनों एक्सचेंज भगवान बता रहे हैं सातवें अध्याय में, जो मूर्खों के लिए मैं अपने आप को कवर कर लेता हूं और जो पूर्ण रूप से मुझ में आसक्त है उनको पूर्ण रूप से मुझे जान लेते हैं। तो किस मात्रा में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं एक सीमित जीव के प्रति के हृदय में, वो निर्भर करता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि किस अनुपात में इस लिमिटेड जीव ने, इस तुच्छ जीव ने भगवान की शरण ग्रहण की है, कितनी मात्रा में हम भगवान के सरेंडर हुए हैं, उतनी मात्रा में भगवान जो कि असीमित है हम पे कृपा करेंगे और हम भगवान को जान पाएंगे। तेषामेव अनुकंपातम अहम अज्ञानजम तमान नश्यामि आत्मभावस्तक ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषामेव अनुकंपातम, मैं उनके कृपा करके उनके हृदय में अज्ञान जो है उसको नाश करता हूं और उनके हृदय में ज्ञान देव को प्रकट करता जिससे वो मेरे जान सके कितनी मात्रा में तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, कितनी प्रीति पूर्वक जो मेरा भजन कर रहा है उतनी ही मात्रा में वो मुझे जान पाएगा। ये प्रपोषण की बात है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो सीमित भी असीमित को जान सकते हैं। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो भगवान कृष्ण भी अपने आप को नहीं जानते पूरा, है ना। उदाहरण दिया जाए, एक बहुत ही धनवान व्यक्ति है, उसे पूछा जाए आपका कितना बैंक बैलेंस है, पता नहीं, असीमित असीमित ऐश्वर्य है। भगवान उद्धव को 11वें स्कंद में बताते हैं कि हो सकता है कोई वैज्ञानिक इस संसार में कितने अणु हैं वो गिन ले, लेकिन मैं अपने ऐश्वर्यों को नहीं गिन सकता। क्यों? भगवान असीमित हैं, तो यानी कि भगवान के गुणों का और ऐश्वर्यों का भी हमेशा वर्धन हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, और भगवान का ज्ञान भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है। भगवान के गुण भी बढ़ते जा रहे हैं, भगवान का ज्ञान भी बढ़ता जा रहा है, दोनों में कॉम्पिटिशन है, तो पता नहीं चलता भगवान स्वयं सर्वज्ञ होते हुए भी मेरे कितने गुण हैं, मेरे कितने ऐश्वर्य भगवान नहीं जानते, क्योंकि इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग। तो जब कृष्ण अपने आप को असीमित अपने आप को नहीं जान सकता तो सीमित कैसे जानेगा। फिर भी जब असीमित कृपा करता है कि ठीक है इतना जान लो, कितना जान लो, जितना कि तुम मेरी शरण ग्रहण करोगे। और इस श्लोक में बताया जा रहा है कि कोई शरण ग्रहण करता है भगवान को जानने के लिए, कौन से तीन तरीके बताए हैं भगवान को जानने के लिए? मौनेना भक्त्या उपशमेना, मौन रख के भक्ति से और भौतिक कार्यों से छुटकारा पाके हम भगवान को जान सकते हैं। तो मौन से कैसे भगवान को जान सकते हैं? प्रभुपाद मौन का क्या अर्थ बताते हैं? केवल कृष्ण कथा करना, कोई फालतू की बात नहीं, प्रजल्पा नहीं। तो प्रजल्पा बंद करके, ग्राम्य कथा बंद करके, ऐसा नहीं है थोड़ा टाइम ग्राम्य कथा थोड़ा टाइम कृष्ण कथा, है ना। नाउ इज द टाइम फॉर ग्राम्य कथा, अब हो गया चलिए ग्राम्य कथा शुरू करें, चलो अब हम कृष्ण कथा, ऐसा करने से नहीं। जितनी डिग्री में ग्राम्य कथा छोड़ेंगे उतनी डिग्री में कृष्ण को जानेंगे, है ना। तो कृष्ण कथा और भक्ति, नवदा भक्ति के सारे अंगों का पालन करके और उपशमेना भौतिक कार्यों से पूर्ण रूप से छुटकारा पाके। यहां शब्दार्थ में बोला गया उपशमेन का अर्थ है कि सारे भौतिक कार्यकलापों को पूरा करके, गलत है थोड़ा सा, पूरा करके मतलब आप बोले ठीक है जी सारे मैं अपने भौतिक जिम्मेवारियों को पूरा करके फिर मैं भगवान को जानूंगा। पूरा करने का मतलब नहीं है इंग्लिश में कोई फिनिशिंग, खत्म कर दो उसको छुटकारा पाके। तो भौतिक क्रियाकलापों से छुटकारा पाके मौन रखे और भक्ति के माध्यम से ही ये है जो जिसने पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वो इस ढंग से भगवान को जान सकता है। मैं आसक्त पूर्ण रूप से, कितनी मात्रा में हमारा मन आसक्त है भगवान से उतनी मात्रा में भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। और भगवान हमारे, हम कैसे भगवान के प्रति मन आसक्त करें? हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, हरि यानी कि भगवान के विग्रह के प्रति, हरि नाम के प्रति कितनी आसक्ति है, गुरु के प्रति कितनी आसक्ति है, वैष्णव के प्रति कितनी आसक्ति है, भागवतम गीता के संदेश के प्रति कितनी आसक्ति है, उतनी मात्रा में कृष्ण में अपने आप को प्रकट करेंगे। शीला प्रभुपाद जी ने शायद 1967-68 में जब शीला भक्ति सिद्धांत सेवी ठाकुर महाराज की तिरुभाव दिवस था तो प्रभुपाद उसे बोल रहे थे कि ये कृपा कैसे मिलती है। हम बोले कि भगवान की कृपा मिल जाए, है ना, भगवान का आशीर्वाद हमें मिल जाए। तो कृपा मिलती है गुरु की इंस्ट्रक्शंस, गुरु के आदेश। तो जितना हम गुरु के आदेशों के प्रति समर्पित होंगे उतना ही भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, मेरे गुरु ने मुझे गौड़िया मिशन दिया, चैतन्य महाप्रभु का मिशन दिया कि इस संदेश को पूरे पाश्चात्य देशों में फैलाओ, और मैंने इस अपने गुरु के आदेश को बहुत गंभीरता से स्वीकार किया, और क्योंकि मैं इसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित था आज इस कौन है और आज आप सब हो। अब यही मैं आदेश आपको देता हूं, जितनी मात्रा में आप इसको गंभीरता से स्वीकार करोगे उतनी मात्रा में और आगे फैलेगा, है ना। अगर प्रभुपाद ने इस आदेश को गंभीरता से स्वीकार ना किया होता तो आज हम यहां पर होते नहीं होते, है ना। प्रभुपाद बिल्कुल वैसा आत्मिका बुद्धि, और क्योंकि गुरु प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा हैज टेकन बर्थ इन द फॉर्म ऑफ इस्कॉन. एक बार एक प्रभात जब साउथ इंडिया में गए तो एक वृद्ध दंपति थे, वो बोले थे स्वामी जी रासलीला सुनाइए, स्वामी जी रासलीला सुनाइए. काफी बारी बोला प्रभुपाद उनको टालते रहे. जब बहुत पीछे पड़ गए तो प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आया. प्रभुपाद ने बोला इस्कॉन इज एन इनकार्नेशन ऑफ कृष्णा टू सेव द होल वर्ल्ड. इस्कॉन एक भगवान का अवतार है पूरे जगत की रक्षा के लिए, आप जैसे उल्टे सीधे लोगों का एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है. तो ये बहुत गंभीरता से लेना चाहिए. प्रभुपाद की कृपा से हम कृष्ण को जान पा रहे हैं, कृष्ण को जानने के पथ पे हैं. अगर प्रभुपाद ने गुरु के आदेशों के प्रति आसक्त नहीं होते तो आज वर्ल्ड पूरे विश्व की स्थिति क्या होती है ना. तो इसलिए जितनी मात्रा में ये कृपा थी उनके ऊपर कि भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने प्रभुपाद को चुना कि ये मिशन तुम संभालो. पूरे इस पूरे वर्ल्ड रिलीजन के इतिहास में ऐसा कोई आचार्य नहीं है जिनको इतना एम्पावरमेंट मिला हो, कोई नहीं. पूरे विश्व में प्रचार करने की शक्ति कहां, किसने किया प्रभुपाद से पहले, और किसे पूरे इतिहास में किसी गुरु ने भी इस मात्रा में अपने शिष्यों को एम्पावर नहीं किया होगा. हिप्पियों को लेकर जाओ तुम विश्व में प्रचार करो गौड़िया वैष्णव का, और देखिए कहां कहां सर पहुंच गए. तुम केन्या, तुम चाइना, तुम फिलीपींस, तुम मलेशिया, तुम इंडोनेशिया, फैल गए सब चारों तरफ. कितनी अद्वितीय स्थिति है श्रील प्रभुपाद की, क्यों? उन्होंने अपने गुरु के आदेशों को गंभीरता से लिया. तो इसलिए तीसरे भाग में नारद मुनि हम सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि भगवान आप सभी जीवों से प्रसन्न हो जाइए, आप कृपा करके हम सबसे प्रसन्न हो जाइए. आप चाहेंगे भगवान को प्रसन्न करना? हरी बोल, हरी बोल. लेकिन ये नारद मुनि का आशीर्वाद कैसे मिलेगा हमें? नारद मुनि तो पहले से आशीर्वाद दे दिया है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, काम हो गया हमारा पूरा. भागवत में रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, ये कोई ऐसी वाली बात नहीं है, लिखित में व्यास देव जी ने लिखा है. प्रसीदताम ईशाम स सात्वताम पति. नारद मुनि कह रहे हैं हे भगवान मे यू बी प्लीज, आप कृपया करके हम सबसे प्रसन्न हो जाइए. तो भगवान अपने भक्ति बात को टालेंगे, होंगे होंगे प्रसन्न. जब भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे तो बस ठीक है, रिलैक्स हो गया काम. ये तो जीवन का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना. तो कैसे कैसे कृपा मिलेगी हमें? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके. प्रभुपाद लिख रहे हैं कोई भी पांडवों की तरह भाग्यशाली बन सकता है अगर वो भगवान की दी हुई शिक्षाओं का पालन करे. कोई भी भाग्यशाली बन सकता है. क्या शिक्षाएं हैं? हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता के प्रति आसक्ति विकसित करके. जब हम प्रतिदिन हरिनाम का जप करते हैं तो हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करें कि आप अपने आप को रिवील कीजिए, अपनी महिमा को रिवील कीजिए, प्रकट कीजिए, मैं आपके प्रति आसक्त हो सकूं. और कैसे? कहते हैं अटेंशन इज द सीड ऑफ अट्रैक्शन. कैसे हम हरि नाम के प्रति अपना आकर्षण विकसित कर सकते हैं? अटेंशन देकर, है ना, ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. जितना हम अटेंशन देंगे उतनी मात्रा में हमारा आकर्षण विकसित होगा हरि नाम के प्रति, गुरु के प्रति, गुरु के आदेशों के प्रति, ड्यूटीज के प्रति. तो भगवान को हम प्रसन्न करें, भाई ये नारद मुनि का आशीर्वाद है. कैसे? सारी इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करके. भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि वो भक्तों से किस किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं, कौन कौन से भक्त उनको प्रिय हैं. अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एवजः, लगभग कोई 35 गुणों का वर्णन करते हैं भगवान कि जिस जीव में ये गुण है वो मुझे बहुत प्रिय है, उनसे मैं प्रसन्न रहता हूं. तो ये गुण भक्तों को कौन प्रदान करता है, कैसे विकसित होते हैं जिससे कि हम भगवान को प्रसन्न कर सके, है ना. अभी इस रूप में हम भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान मे बी यू विल नॉट बी सो प्लीज्ड, इतनी काम वासनाएं हमारे अंदर भरी हुई है. प्रयास करेंगे हाँ तो भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न है. तो सारे के सारे ये भक्तों को गुण भी प्रदान करते हैं भगवान स्वयं, है ना. कृष्णा डेकोरेट्स अस विद ऑल द गुड क्वालिटीज, है ना. श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे जब हम कोई भक्त भगवान के अर्चन ग्रह का श्रृंगार करता है, उनको सजाता है, तो किसके समान है? प्रभुपाद कहते हैं जैसे हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, दर्पण में देख के हमें अगर तिलक लगाना है तो मुझे अपने माथे पर तिलक लगाना है तो मैं अपने आप को देख के लगाऊंगा तिलक, या अपने इमेज को जो अपना रिफ्लेक्शन है दर्पण में उसको देख के तिलक लगाऊंगा रिफ्लेक्शन को? तो मैं अपने आप को शीशे में देख रहा हूं तो शीशे में देख रहा हूं तिलक सही लगे, अपने आप को नहीं देख रहा हूं शीशे को देख रहा हूं, तो उस रिफ्लेक्शन को सजा रहा हूं तो अपने आप को सजा रहा हूं। इसी ढंग से जब हम भगवान की सजावट करते हैं तो भगवान की सजावट नहीं करते, वास्तव में अपनी सजावट करते हैं। भगवान तो अपने आप में पूर्ण है, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम सुंदर सुंदर भोग ऑफर करते हैं, भगवान अपने आप में पूर्ण है, आत्मा राम है। भगवान जब देखते हैं कि ये भक्त, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, ये भक्त कितने कितने अच्छे सर्विस एटीट्यूड के साथ, कितने विनम्रता के साथ, कितनी शरणागति के साथ मेरी सजावट करना चाहता है, तो भगवान क्या करते हैं, अच्छे गुणों से हमारी सजावट कर देते हैं। और जब अच्छे गुणों से सज के हम भगवान के सामने आते हैं तो भगवान हमें देखकर बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ये है सारी साइंस कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो कितनी मात्रा में हमें गुण प्राप्त होंगे निर्भर करेगा कितना हमारा भगवान के प्रति शरणागति है, कितनी तीव्रता से हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। जितनी मात्रा में हम भगवान की हृदय से भगवान की सेवा करना चाहेंगे उतना अच्छा भगवान हमारा श्रृंगार करते हैं, समझे ना। जैसे कि भक्तों में अनंत गुण है लेकिन 26 मुख्य गुण बताए गए हैं, इन 26 गुणों को दो भागों में बांटा गया, एक स्वरूप लक्षण और तथस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है, कृष्ण एक शरण, और तथस्थ लक्षण है सारे विनम्रता, सहनशीलता, कृपा, करुणाशील, शांत, मिद्भुक इत्यादि। ये जो बाकी 25 गुण है ये क्या है, सब तथस्थ लक्षण है। ये 25 गुण अपने आप विकसित होंगे जब हमारे अंदर ये मुख्य लक्षण स्वरूप लक्षण होगा। यानी कि अगर हम कृष्ण के प्रति शरणागत हैं और पूरा भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तीव्रता से, तो ये 25 बाकी 25 गुण अपने आप विकसित होंगे, है ना। सब निर्भर करता है कि हम कृष्ण की शरण लेने के लिए कितने तीव्र हैं, कितने उत्साहित हैं। जैसे कि हम देखते हैं जब नारद मुनि मृगारी से मिले, मृगारी ने बोला सबको छोड़ दो बस हरि नाम लो तुलसी महारानी के सामने बैठ के, मृगारी ने सब कुछ छोड़ दिया, धनुष वही तोड़ दिया, नारद मुनि चिंता मत करो मैं तुम्हारा पालन करूंगा, बस तोड़ दिया सब कुछ, पूरा धंधा बंद, और भगवान के तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप कर रहे हैं। और पूरे गांव में खबर फैल गई, सब कुछ आना उनके पास अन्न और सामग्री आने शुरू हो गई, और मृगारी ने फूड फॉर लाइफ करना भी शुरू कर दिया, है ना। और फिर जब आए नारद मुनि अंगिराम ऋषि के साथ देख के, तो आए मेरा शिष्य कैसे कर रहे हैं, अपडेट होकर रहते हैं, तो वो देख रहे थे कि वो एक चींटी को भी नहीं मारना चाह रहे, कहा वो मृगारी जो कि घायल पशु पक्षियों को देखकर हंसता था, बहते हुए खून को देखकर आनंद प्राप्त करता था, आज वो एक चींटी को भी नहीं मारना चाह रहा। ये सारे गुण कैसे विकसित हुए, इतनी दया कैसे विकसित हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का जो मुख्य आज्ञा थी उसका पालन किया। शिला प्रभुपाद के एक सेवक थे, वो प्रभुपाद के कमरे की सफाई कर रहे थे, बड़े ध्यान से सफाई कर रहे थे, और कुछ चींटियां थी उनको बड़ी ध्यान से वो पीछे कर रहे थे। प्रभुपाद देख के बहुत प्रसन्न हो गए, बोले ये था जो पहले की सारा मांस भक्षण करता था, आज एक चींटी को भी नहीं माना चाहता। फिर प्रभुपाद ने मृगारी की कथा याद की, क्योंकि इसने मेरी इंस्ट्रक्शंस को बहुत गंभीरता से लिया है। शिला प्रभुपाद जब अमेरिका गए, बहुत हताशा का सामना करना पड़ा, कहीं सफलता नहीं मिल रही। प्रभुपाद कई बारी वापस डॉकयार्ड में जाते थे, वो पूछते थे भारत के लिए शिप वापस कब जा रही है। प्रभुपाद का मन करता था चलो वापस चले, लेकिन फिर अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन से याद आती थी, उसके प्रति जब पूर्ण शरणागति, तो अपने हम देखते हैं कि हमारी सहनशीलता, हमारे कष्टों के सहने की क्षमता और बढ़ जाती है। सो कितनी मात्रा में हमारी शरणागत है आदेशों के लेकर, ये बाकी गुण अपने आप विकसित होंगे। कितनी मात्रा में हमारी शरणागति है, नए पुस्तक वितरण बढ़ाना है, उतनी मात्रा में नए नए आइडियाज आएंगे, उतनी मात्रा में हम ठंड को सहन कर पाएंगे, अपमान को सहन कर पाएंगे, क्योंकि नहीं हर हालत में मुझे पुस्तक वितरण करना है। क्यों, प्रभुपाद ने बोला है इफ यू वॉन्ट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। कितनी हृदय में हमारी इच्छा है कि हम प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो इच्छा उतनी तीव्र हो गई कि कितनी गंभीरता से हम अपने आध्यात्मिक जीवन को ले रहे हैं। यस, प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद कहते मैं जीवित रहूंगा जब तक पुस्तक वितरण चलता रहेगा। आप देखते हैं प्रभुपाद के शिष्यों को जब भी वो बोलते हैं पुस्तक वितरण करो, तुरंत वो कारण सबसे पहला कारण ये देते हैं प्रभुपाद ने कहा है कि मैं जीवित रहूंगा, है ना। उनको फॉरमोस्ट डिजायर है कि प्रभुपाद जीवित रहे 10,000 वर्षों तक। प्रभुपाद कह रहे मैं जीवित रहूंगा, अरे प्रभुपाद जीवित रहेंगे, हमने आपने चाहिए प्रभुपाद जीवित रहे, है ना। जीवित रहने का मतलब प्रभु हमारे साथ रेसिप्रिकेट करें। प्रभुपाद इज नॉट जस्ट मूर्ति, प्रभुपाद की मूर्ति नहीं है, है ना। अभी कौन बता रहा था कि वो वृद्ध व्यक्ति हमारे सामने आया और सपनों में आया और उसने बोला कि हाँ, जैसे एक साथ में एक और थे हमारे जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य रशिया में जो भी सन्यासी बने हैं, भक्ति भक्ति अनंत कृष्ण महाराज, हाँ मोहन को बता रहे थे ना कि वो आर्मी में थे तो उनको किसी ने गीता दी, तो उनके जो नीचे असिस्टेंट थे वो कर्नल थे, नीचे एक सैनिकों ने उनको गीता दी कि आप पढ़िए, तो बाहर उसे फॉलो करते आपने पढ़ ली क्या, आपने पढ़ ली क्या, बोले हाँ पढ़ ली, तो क्या किया था उन्होंने खाली अनुवाद अनुवाद पढ़ा था। तो बाबा उनके सपने में उनका गला पकड़ लिया, कहाँ पढ़ी मेरे पर पट्स पड़े हैं क्या। तो इसी ढंग से हम प्रभुपाद को जीवित रख सकते हैं पुस्तक वितरण करके, है ना। प्रभुपाद ने क्यों पुस्तक वितरण किया, क्योंकि भक्ति सिद्धांत संत ठाकुर महाराज की तीव्र इच्छा थी कि पुस्तक वितरण हो। और अगर ये संस्था आगे चलती रही, गौड़िया वैष्णव आंदोलन आगे चलता रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंस्ट्रक्शंस को हृदय में उतारना पड़ेगा। और जितनी मात्रा में हमारी तीव्र इच्छा होगी, हम हर प्रकार के कष्टों को सह लेंगे। देखिए रशियंस हर प्रकार के कष्टों को सहा, क्यों, तीव्र इच्छा थी प्रसन्न करना है, नहीं होगी थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी छोड़ देंगे बस। तो गुण विकसित ही नहीं होंगे, वो विनम्रता वो सहनशीलता वो दया विकसित ही नहीं होगी, क्यों, जो प्राइमरी इंस्ट्रक्शन है स्वरूप लक्षण नहीं है तो तरस लक्षण कैसे आ जाएगा, है ना। स्वरूप लक्षण है मेन, जो हमारा शरणागति होना वो नहीं है तो स्वरूप तटस्थ लक्षण कैसे विकसित होंगे, और फिर हम कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे, कैसे हम कृष्ण को अपने प्रति आकर्षित कर पाएंगे। सर्व आकर्षक को आकर्षित कर सकते हैं अपने गुणों से, है ना। कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, वाह ये सज धज के भक्त आया, सज धज के ठीक है भगवान के सामने अच्छे अच्छे कपड़े डाल के आना चाहिए, तिलक लगा के आना चाहिए, लेकिन असली हमारी सजावट क्या है, हमारे वैष्णव गुण। और सारे वैष्णव गुण निर्भर करते हैं कि हमारे हृदय में कितनी तीव्रता है, कितनी उत्सुकता है, कितना उत्साह है कि हम भगवान की शरण ग्रहण करें। तो इस श्लोक में मुख्यतः तीन बातें बताई गई, कैसे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज का गुणगान कर रहे हैं कि उन पर कितनी कृपा है, और कैसे हम भी उस कृपा को प्राप्त कर सकते हैं अगर भगवान के आदेशों का हम पालन करें। भगवान के आदेशों का मुख्य उद्देश्य है हरि गुरु वैष्णव और भागवतम के संदेश के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ाएं, अपने मन को लगाएं, और फिर नारद मुनि का यह आशीर्वाद हम सबके लिए कि भगवान हमसे प्रसन्न हो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम अपने में हमें सद्गुण विकसित करने पड़ेंगे। ये आशीर्वाद हमें मिलता है इंस्ट्रक्शंस के रूप में, उसका हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। हरे कृष्ण। क्वेश्चंस और टिप्पणी कमेंट्स। भौतिक कार्य छुटकारा कर देंगे, हमारा कोई भी कार्य भौतिक नहीं होना चाहिए, भक्त का हर कार्य आध्यात्मिक है। आप बिजनेस भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं, तो वो कार्य भी आध्यात्मिक बनना चाहिए, भौतिक नहीं रहना चाहिए। यानी कि अपने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, ठीक है ना। वो कैसे करना है इसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो मार्गदर्शन में करेंगे तो हर कार्य दिव्य हो जाएगा। वेरी गुड। अपने गुण कर्म के अनुसार कोई डायरेक्टली बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाता सामने आके, कोई बात नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से वो सहायता करें। संकीर्तन है और सारे के सारे ये जो हमारे अलग अलग विभाग हैं श्रील प्रभुपाद जी के इस दिव्य आंदोलन में, सबका मुख्य उद्देश्य संकीर्तन, यानी कि भगवान के नाम का प्रचार, भगवान के दिव्य संदेश का प्रचार। चाहे कोई किचन में सर्विस कर रहा है या चाहे कोई सफाई भी करवा रहा है मंदिर में, वो भी इसका मुख्य उद्देश्य है कि संदेश का प्रचार हो। तो सामने आके या पीछे रह के किसी न किसी ढंग से संकीर्तन और में हम अपने गुणों के अनुसार सेवा में लगे। हाँ निश्चित, लेकिन उसका उसको क्लियर होना चाहिए कि वो ये क्यों कर रहे हैं, नहीं तो वो फ्रस्ट्रेट होगा कि मैं तो यहां झाड़ू लगाता रहता हूं, झाड़ू क्यों लगा रहे हैं यहां पे, इसका उद्देश्य क्या है? झाड़ू लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि हरिनाम का प्रचार हो, भगवान के संदेश का प्रचार हो। कोई शूज स्टॉल में भी सेवा कर रहे हो तो उसको पूरा क्लियर होना चाहिए कि यहां जो आ रहे हैं विजिटर्स आ रहे हैं उनकी किस ढंग से सेवा करनी जिससे वो भगवान के संदेश से आकर्षित हो जाए। अंदर आए तो पुस्तक लेके जाए, क्यों? उनका जूता चोरी ना हो, सही ढंग से पढ़ा जाए, है ना। योग्यता कुछ और है लेकिन योग्यता के अनुसार सेवा नहीं मिल रही है आपके का ये कहना है, तो जिनसे वो सेवा प्राप्त हुई है उनसे दिल खोल के बात करनी चाहिए, तो डरना थोड़ी है, दिल खोल के विनम्रता से दिल खोल के बात करें कि ये हम चाहते हैं, ये आप चाहते हैं, तो संबंध में कुछ मिल जाएगा। हाँ जी, सन्यासी भी डेजिग्नेशन,
भौतिक डेजिग्नेशन,
हाँ डेजिग्नेशन।
थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रवचन था आपका। ये जो आप बता रहे थे कि जो भौतिक स्किल्स हैं हम उसके माध्यम से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते किसी भी तरह से, ये ठीक है बिल्कुल, इसमें सिद्धांत है, लेकिन हम देखते हैं कि ज्यादातर मंदिरों में ये आध्यात्मिक संस्था या जहां भी भौतिक स्किल की लोग ज्यादा प्रवाह करते हैं, ऐसे व्यक्ति को ज्यादा बढ़ावा मिलता है, ऐसे व्यक्ति को पीठ थपथपाया जाता है, ऐसे व्यक्ति को फूलों का माला पहनाते हैं, हम इवन ट्रेनिंग भौतिक स्किल की देते हैं, हम जो ट्रेनिंग देते हैं भक्तों को वो भी भौतिक स्किल की देते हैं, फिर इसको कैसे रिकनसाइल करें?
रिकनसाइल तो भगवान की कृपा से ही हो पाता है, क्योंकि भक्ति के तत्व को जाना इतना आसान नहीं है, बहुत बिगल्डरिंग है, अगर हम सही ढंग से ना समझे तो बहुत बिगल्डरिंग है। तो हर चीज भगवान की सेवा के लिए है, स्किल्स भी है तो भगवान की सेवा के लिए है। अब अर्जुन को भगवान ने बोला कि जाओ सभी देवताओं से अलग अलग तरह के बाण लेके आओ, युद्ध लड़ना है, कॉम्पिटेंस बढ़ाओ अपने, तो अर्जुन ने सब जगह से बाण लिए ताकि मेरे को युद्ध लड़ना है, इसलिए युद्ध लड़ना है ये दिखाने के लिए, सबसे बड़ा धुन धर्म मेरे पास देखो कैसे कैसे बाण है, नहीं भगवान की आगे बस। आज पूरे विश्व में जो भक्त नहीं है वो इतने स्किल से मीडिया से धड़ाधड़ उल्टे सीधे चीज का प्रचार कर रहे हैं, है ना, उल्टे सीधे गंदगी का प्रचार कर रहे हैं, उसको रोकना कैसे होगा, उसके लिए स्किल्स चाहिए। भक्त आम भौतिकवादी से ज्यादा चतुर होते हैं, है ना। भक्तिनाथ ठाकुर क्या कहते हैं, कर्मियों को इतनी मेहनत करते हुए मैं बड़ा उत्साहित होता हूं, इंस्पायर होता हूं उनसे, तो हमें उन्हीं स्किल्स का कांटे से कांटा निकालना है, जिस स्किल्स का आश्रय लेके वो अराजकता फैला रहे हैं उसी स्किल्स का उपयोग करके हमें भक्ति को साबित, सारी फेसबुक सारा ये सब इंटरनेट वगैरह में सब जगह क्या करना, डिफ्लेक्ट कर देना है। क्रिकेट में स्लो बॉलर पे छक्का मारना मुश्किल होता था, बहुत जोर लगाना पड़ता है बैट्समैन, फास्ट बॉलर को खाली डायरेक्शन देनी पड़ती है वो छक्का लग जाता है, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट स्पीड में चल रही है, बस सही डायरेक्शन में उसको डेविएट करना है, भक्ति फैल जाएगी। वो करने के लिए स्किल्स चाहिए। अब हर जगह जाके मैं हरी बोल नहीं कर सकता भैया, नेट चलाओ हरी बोल, आप समझे ना, हरी बोल करना है और हरी बोल को फैलाना है तो आना चाहिए, सारा सारा मीडिया यूज करना आना चाहिए, सारे स्किल्स आने चाहिए, और जो ये करो उसकी पीछे थपथपाएंगे ना, भाई तुमने मिशन को आगे बढ़ाया। अब जो दूसरा व्यक्ति है वो ये नहीं देखा इस पर कितनी कृपा हुई है, स्किल्स भी कृपा से मिलते हैं, स्किल्स क्या कृष्ण से बाहर है क्या? ध्यानपति भगवान हर प्रकार के मतलब इंटेलिजेंस के भी मास्टर है, डायरेक्ट भक्ति बन जाएगी वो क्यों नहीं बनेगी? अरे जो स्किल्स का उपयोग भगवान की सेवा में कर रहा है, क्या अर्जुन डायरेक्ट भक्ति नहीं कर रहा, युद्ध लड़के कर रहा है डायरेक्ट भक्ति, डायरेक्ट भक्ति है। केवल स्किल्स के आधार, कि मैं जैसे अर्जुन सोचा मैं इतना बड़ा धनुर्धर हूं, जहां भावना आ गई कृपा हट गई खत्म काम। हम सब कृपा से बने, हम लोग अपने स्किल से नहीं बने, स्किल्स भी कृपा से ही प्राप्त हो रहे हैं, स्किल्स का उपयोग भी भगवान की सेवा में कृपा से ही होगा। जहां इस बात को भूलेंगे वहां हर चीज द लाइफ हैज गॉन आउट, वो स्पिरिट खत्म हो गई तो सब कुछ मैटर है, फिर कुछ नहीं चलेगा। कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंतकोटि वैष्णव वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ राशि में भागवतम के निदाय गौर प्रेमानंदे।